आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी बाहमी ताल्लुकात में नया संग मील तय करके पोलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल किया है। वजीर आजम यूक्रेन के एक दिन के दौरे पर आज कीव पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वजर दिफा राजनाथ सिंह अमरीका के चार दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वो अमरीका के अपने हमनसब लॉयड ऑस्टिन और कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवन के साथ बातचीत करेंगे। सरकार ने मुल्क में पानी पर उड़ान भरने वाले और उतरने वाले सी प्लेन को चलाने के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। खला से मुतालिक पहला कौमी दिन आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है और स्विट्जरलैंड के लोसान डायमंड लीग टूर्नामेंट में नेजा फेंकने के मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर की दूरी तक नेजा फेंककर दूसरा मकाम हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कल वारसा में पोलैंड के अपने हमनसब डोनाल्ड टस्क और वहां के सदर आंद्रेज डुडा के साथ मुलाकात के बाद पोलैंड का अपना तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। जनाब मोदी ने पोलैंड के अपने दौरे को एक खसूसी दौरा करार दिया और वस्ती यूरोप के मुल्क पोलैंड को भारत का अहम दोस्त करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस दौरे से एक अहम दोस्त मुल्क के साथ ताउन को मजीद वसत देने का मौका मिला है। जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी के लिए पोलैंड के अवाम और वहां की सरकार का शुक्रिया अदा किया। पोलैंड के वजीर आजम के साथ बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत पोलैंड ताल्लुकात के लिए यह खास दिन है क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय वजीर आजम ने 1979 में पोलैंड का दौरा किया था। जनाब मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को मदु किया कि वो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड में शामिल हों।
हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं।
दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को किलीदी साझेदारी में बदलने का फैसला भी किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और पोलैंड के सदर आंद्रेज दुदा ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी साझेदारी को वसत देने पर तबादला ख्याल किया, जिनमें खुराक को डिब्बाबंद करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई और बुनियादी ढांचे का शोबा शामिल हैं। जनाब मोदी ने पोलैंड में भारतीय उलूम के मुमताज माहिरीन के ग्रुप से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पोलैंड की कबड्डी फेडरेशन के सदर से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पोलैंड में लोग कबड्डी में काफी दिलचस्पी लेते हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी यूक्रेन के एक दिन के दौरे पर आज कीव पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी यूक्रेन के सदर वलादिमिर जेलेंस्की के साथ बिलमुशाफा और वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि यूक्रेन में लड़ाई के खात्मे के तौर तरीके तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। लड़ाई से मुतासरा यूक्रेन के दौरे से कबल वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत का यह पुख्ता यकीन है कि कोई भी मसला मैदान जंग पर हल नहीं किया जा सकता और भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली की खातिर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं।
जनाब मोदी ने कल वारसा में पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क के साथ मुजाकरात के बाद ये बात कही। मुश्तरका बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बैन अल-अक़वामी कानून को सरबुलंद रखने की अहमियत पर जोर दिया और यह बात दोहराई कि सभी मुल्कों को किसी भी दीगर मुल्क की इलाकाई सालमियत और इख्तदार आला या सियासी आजादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने या धमकी देने से गुरेज करना चाहिए। जनाब मोदी ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन और मगरबी एशिया में जारी लड़ाई हम सभी के लिए गहरी तशवीश का मामला है। وارسا کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی سخت سیکورٹی میں ایک ریل گاڑی کے ذریعے یوکرین کی راجدھانی کیو جا رہے ہیں اور ان کے اس سفر میں تقریباً 10 گھنٹے لگیں گے۔ جناب مودی ماسکو کے دورے کے 6 ہفتے بعد یوکرین جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1992 میں بھارت اور یوکرین کے سفارتی رشتے قائم ہونے کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ جناب مودی اور صدر زیلنسکی کی باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے کی امید ہے۔ ان میں معاشی اور کاروباری رابطے، زراعت، بنیادی ڈھانچہ، صحت، تعلیم، دوا سازی، دفاع، کلچر اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبے شامل ہیں۔ جناب مودی کا یہ دورہ یوکرین میں جاری لڑائی کے پس منظر میں ہو رہا ہے اور اب بات چیت میں یہ معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ بھارت نے کوئی حل نکالنے کی خاطر لگاتار ڈپلومیسی اور مذاکرات کی وکالت کی ہے۔ جناب مودی کے یوکرین کے تاریخی دورے سے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوکرین کے دورے سے لڑائی ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کے ترجمان نے یہ بات اس وقت کہی جب ان سے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوکرین کے دورے پر رد عمل ظاہر کرنے کو کہا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ کئی سربراہان مملکت اور حکومت خطے کا دورہ کر چکے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان سبھی رہنماؤں کے دورے سے ہم لڑائی کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کل شام امریکہ کے 4 روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچے ہیں۔ وہ امریکہ کے وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے میں جناب سنگھ امریکہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کریں گے اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب راجناتھ سنگھ موجودہ اور مستقبل کے دفاعی اشتراک کے سلسلے میں امریکہ کی دفاعی صنعت کے ساتھ ایک اعلی سطحی گول میز میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے۔ نومبر 2023 میں بھارت امریکہ 2+2 5ویں سالانہ وزارتی مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے باہمی دفاعی اقدامات میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ بھارت اور امریکہ نے سامان اور خدمات کی یقینی فراہمی کا سمجھوتا کیا ہے جس کے تحت دونوں ملک فراہمی میں غیر متوقع رکاوٹ دور کر کے ایک دوسرے سے وہ صنعتی وسائل حاصل کر سکیں گے جن کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ قومی سلامتی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگن نے ایک بیان میں یہ جانکاری دی ہے۔ مذکورہ بندوبست کے ذریعے بھارت اور امریکہ نے ایسے سامان اور خدمات کے لیے ایک دوسرے کو ترجیحی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے جن سے قومی دفاع کو فروغ حاصل ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے علاقائی رابطے کی اسکیم اڑان کے تحت پانی پر اڑان بھرنے والے اور اترنے والے سی پلین کو چلانے کے لیے رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ ان میں سی پلین کے تحفظ اور سلامتی کو ترجیح دی گئی ہے اور آپریٹر سے لے کر انضباطی اداروں تک ہر متعلقہ فریق کی ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا ہے۔ مذکورہ رہنما اصولوں میں پورے ملک میں سی پلین بلا رکاوٹ اور مؤثر انداز سے چلانے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نئی دلی میں اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ ان رہنما اصولوں کا مقصد ملک کے دور دراز علاقوں کو جوڑنا اور سبھی کے لئے سفر کو زیادہ سہل بنانا ہے۔ وزیر مصروف نے بتایا کہ اڑان اسکیم کی کامیابی کے بعد سرکار اگلے 10 سال میں مذکورہ اسکیم کے دوسرے مرحلے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ موجودہ ایویشن نظام کے ساتھ سی پلین کو مربوط کرنے سے ان خطوں میں بھی رابطہ قائم ہو سکے گا جو ابھی تک جغرافیائی چیلنجوں کی وجہ سے الگ تھلگ تھے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ ٹرانسپورٹیشن کے اس نئے وسیلے سے خاص طور پر سیاحت کے شعبے میں معاشی ترقی کے نئے راستے بھی کھلیں گے۔
Providing last mile connectivity to regions that have remained isolated due to geographical challenges. This new mode of transportation will not only offer faster and more comfortable travel to those areas, but also open up new avenues for economic growth, particularly in the tourism sector.
آج ملک بھر میں خلا سے متعلق پہلا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اصل تقریب کا افتتاح کریں گی جو نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہوگی۔ اس سال کی تقریبات کا موضوع ہے بھارت کا خلائی سفر چاند تک پہنچنے تک۔ خلا سے متعلق قومی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ روبوٹکس چیلنج اور بھارتی انترکش ہیکاتھون کے فاتحین کو اعزازات سے بھی نوازیں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन ने विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर महफूज और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस कामयाबी के साथ भारत खलाई सफर करने वाले मुमताज मुल्कों के ग्रुप में शामिल हो गया। भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा मुल्क जबकि चांद के कुतुब जनूबी के करीब उतरने वाला पहला मुल्क बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की कामयाब तैनाती अमल में आई। लैंडिंग के मकाम का नाम शिव शक्ति प्वाइंट रखा गया और 23 अगस्त को खला का कौमी दिन मनाने का ऐलान किया गया। खला का कौमी दिन खलाई तहकीक में नुमाया कामयाबियों को उजागर करता है और खलाई टेक्नोलॉजीज में होने वाली पेशरफ्त का एतराफ करता है। खलाई तहकीक में भारत का सफर 1960 की दहाई के अवायल में शुरू हुआ था। इसके बाद वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज तैयार करके मुसलसल तरक्की करता रहा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा करेंगे। अपने एक रोजा दौरे के दौरान नायब सदर गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के तलबा और असातजा से खिताब करेंगे। बाद में दिन में जनाब धनखड़ अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में धर्मा धम्मा बैनलाख्वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में चांदी का तमगा जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा कल रात स्विट्जरलैंड के लोसान डायमंड लीग 2024 में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में दूसरे मकाम पर रहे। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी ने 89.49 मीटर नेजा फेंककर इस सीजन में अब तक की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नीरज चोपड़ा ग्रेनाडा के पीटर एंडरसन से पीछे रहे जिन्होंने 90.61 मीटर नेजा फेंककर पहला मकाम हासिल किया। एंडरसन ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कांसे का तमगा जीता था लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने शुरुआत से ही बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। जर्मनी के जूलियन वेबर 87.08 मीटर नेजा फेंककर तीसरे मकाम पर रहे। कुश्ती में उर्दुन के अमान में 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की आलमी चैंपियनशिप में कल भारत की 4 कुश्ती खिलाड़ियों ने सोने के तमगे जीते। सोने के तमगों के लिए अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं। एक के बाद एक तमगे जीतने के साथ खवातीन की भारतीय कुश्ती टीम का खिताब जीतने के लिए वो सबसे पसंदीदा टीम बन गई है। 43 किलोग्राम के जुमरे में अदिति कुमारी, 57 किलोग्राम में नेहा, 65 किलोग्राम में पुलकित और 73 किलोग्राम में मानसी लाथर ने अपने अपने जुमरों में आलमी खिताब जीते। खेलो इंडिया आज एक वेबिनार का इनेकाद करेगा ताकि डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में खिलाड़ियों की मदद की जा सके। भारत की जानिब से यह मखसूस वेबिनार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे से मुतालिक खबर को शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, भारत और पोलैंड का दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की हैसियत देने का फैसला। वजीर आजम मोदी और डोनाल्ड टस्क के दरमियान दो तरफा बातचीत, शहरी तरक्की, तकनीकी अपग्रेडेशन समेत मुतादिद फैसलों का ऐलान किया गया। अखबारों ने अदालत आलिया की हिदायत के बाद मुल्क भर में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार इनकलाब तहरीर करता है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की। अखबारों ने मगरब बंगाल के आरजी कर अस्पताल में सीआईएसएफ एहलकारों की तैनाती की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबारों की एक अहम खबर है, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मगरबी वस्ती खित्ते के इलाकाई देही बैंकों की जायजा मीटिंग की।
अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाहमी ताल्लुकात में नया संग मील तय करके पोलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वजीर आजम यूक्रेन के एक दिन के दौरे पर आज कीव पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन तआवुन के लिए तैयार है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अमरीका के 4 दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वो अमरीका के अपने हमनसब लॉयड ऑस्टिन और कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवन के साथ बातचीत करेंगे। और खला से मुतालिक पहला कौमी दिन आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।